चलिए अब तफसीर देखते हैं, आयत नंबर 47 से 59। या बनी इसराइल अस्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वअन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल, याद करो मेरे वो एहसान जो मैंने तुम पर किए, और इसको कि मैंने तुमको बढ़ाई दी तमाम आलमों पर। और क्या करो, वत्तकू यौमन ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, और डर जाओ उस दिन से जिस दिन कोई नफ्स किसी दूसरे के काम नहीं आएगा। वला युक्बलु मिन्हा शफाआ, और ना उससे कबूल की जाएगी सिफारिश। वला यूखज़ु मिन्हा अदलुन, और ना उससे लिया जाएगा बदला। वला हुम युनसरून, और ना वो मदद दिए जाएंगे। यहाँ से एक बार फिर बनी इसराइल को खिताब है। पहली आयत तकरीबन वही है जो पीछे पिछले रुकू की पहली आयत थी। पीछे बात हो चुकी कि सूरत बकरा के 5वें रुकू से लेके 14वें यानी 14th रुकू तक, बल्कि 15वें रुकू की पहली 2 आयतों को भी साथ मिला लें तो तकरीबन 10 रुकू से जायद हैं ये 2 आयत। इसमें बनी इसराइल से खिताब है। पहला रुकू जो हम पढ़ चुके, इसमें दावत पर बात है। इन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की पुरजोर दावत दी गई। अब इसके बाद यानी इस रुकू से लेके आगे तक जो 9 रुकू हैं तकरीबन, इसमें बनी इसराइल को उनकी तारीख के वाक़यात सुनाकर आर दिलाई जा रही है, और याद दिलाया जा रहा है कि देखो तुमने अल्लाह ताला के एहसानात और उसकी नेमतों के जवाब में क्या रवैया अख्तियार किया। और साथ ही साथ उम्मते वसत को ये पैगाम दिया जा रहा है कि देखो अगर बनी इसराइल अल्लाह ताला की नेमतों की नशुक्री करने की वजह से नियाबत के हक से उतार दिए गए तो तुम भी अल्लाह की ज़रूरत नहीं हो, अल्लाह तुम्हें भी उतार सकता है। इस रुकू में हम तारीख के वो वाक़यात पढ़ेंगे जो 40 साल से ज़ायद के अरसे पे मुहित हैं, लेकिन इस रुकू का अंदाज़ बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एल्बम के सफ़े पलटते जाएं और कहें ये इस साल की तस्वीर है, ये उसके अगले साल की है, ये उससे अगले साल की है। और इस पूरे रुकू की तफसील जो है ये सूरत अल आराफ में आएगी, इसलिए हमारा भी इसको पढ़ने का अंदाज़ ऐसा ही होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की बजाय जहाँ आगे हर वाक़े की डिटेल आएगी उसको इंशाल्लाह वहाँ देखेंगे। लेकिन ये बात सुनते हुए जहन में रखिए कि अल्लाह ताला यहाँ बनी इसराइल की गिबतें नहीं कर रहे या उनकी बुराइयाँ पेश नहीं कर रहे, या अल्लाह ताला का ये काम नहीं है कि वो दूसरी कौमों की बुराई बयान करके उनको रुसवा करे, बल्कि दर हकीकत यहाँ उम्मते मुस्लिमा को बताया जा रहा है कि तुमने अगर वही काम किया जो उन्होंने किया तो तुम्हारे बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात सच साबित हो जाएगी जो आपने फरमाई थी, लयातियन्न अला उम्मती मा अता अला बनी इसराइला खज़वन नाल बिन नाल। आपने फरमाया मेरी उम्मत पर भी वो सब हालात वारद होकर रहेंगे जो बनी इसराइल पर आए थे, बिल्कुल ऐसे जैसे एक जूती दूसरी जूती के मुशाबे होती है। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है किताबुल ईमान की, यानी अल्लाह के नबी सल्लम ने बताया कि उम्मते मुस्लिमा पिछली कौमों की मुशाबहत करेगी, जैसे जूती का एक पाँव दूसरे पाँव के बिल्कुल बराबर का होता है एक ही डिज़ाइन का, इसी तरह उम्मते मुस्लिमा के रवैये भी ऐसे ही होंगे। और आज हम देख सकते हैं कि किस तरीके से उम्मते मुस्लिमा उन सारे कामों के पीछे जा रही है जो पिछली कौमों को मनसब से उतारने का जरिया बने। इसी तरह एक और रिवायत अबू सईद अल-खुदरी की है सही बुखारी में, अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया लतत्तबेउन्न सुनन मन कबलकुम शिब्रम बिशिब्रम, तुम लाजमन अपने से पहलों के तरीकों की पैरवी करोगे, बालिश्त के मुकाबले में बालिश्त और हाथ के मुकाबले में हाथ। यहाँ तक कि अगर वो गोह एक जानवर होता है जैसे छुहिया होती है या छोटा सा एक जानवर होता है उसको गोह कहते हैं, अगर वो गोह के बिल में घुसे हुए होंगे तो तुम भी घुस कर रहोगे। हमने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल क्या यहूदो नसारा की मुमासलत करेंगे, तो आपने फरमाया तो और किसकी। इसमें भी आप देख सकते हैं कि اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ثابت ہو رہی ہے، اور ایک روایت تو ایسی ہے کہ جو واقعی انسان کو ہلا دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیتن لکان فی امتی من یصنع ذلک، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی بدبخت ایسا اٹھا ہوگا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا، تو تم میں سے بھی کوئی ایسا بدبخت ضرور اٹھے گا جو یہ حرکت کرے گا۔ تو لہٰذا آج اگر ہم ان آیات کو پڑھیں تو ذہن میں یہ رکھیے گا کہ یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے، کہ کہیں آج ہم بھی اس گمراہی میں تو نہیں پڑ چکے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے آپ کو کہیں تو مسلمان لیکن حقیقت میں ہم مسلمان نہ رہے ہوں۔ انشاءاللہ آیتیں آئیں گی اور آپ دیکھیں گے۔ اور ایک اور چیز بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان آیتوں کو پڑھتے وقت ذہن میں رکھنے کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان آیات کے اندر آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ جیسے یہ ایک بریکٹ ہے، یعنی بریکٹ ایک طرف لگتی ہے نا، یا بنی اسرائیل، اب بالکل یہی آیت آخری رکوع کے اینڈ پہ بھی آئے گی کہ یا بنی اسرائیل، اور بلکہ یہی جو آیت ہمارے سامنے آ رہی ہے واتقوا یوماً والی، اس میں بھی تھوڑے سے الفاظ کے فرق سے آئے گی۔ ان کے اندر جتنی چیزیں ہیں نا، یہ در حقیقت وہ چیزیں ہیں کہ جس پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانے کی پرزور قسم کی دعوت ہے۔ اور ان آیتوں سے آپ ایک اور چیز بھی سمجھیں گے، اور وہ کیا ہے کہ دین وہ دین ہے جو محمد رسول اللہ لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ میں کچھ فتنے اٹھے، اور ایک فتنہ دین الہی کا فتنہ تھا، شاید آپ نے کبھی اس کا نام ہسٹری میں سنا ہو، لیکن ہم نے اس رنگ میں کبھی نہیں اس کو سنا جو اس کی حقیقت تھی۔ اکبر نام کا ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک نیا دین جس کو دین اکبری یا دین الہی کا نام دیا، اور یہ وہ سوچ تھی کہ جس نے لوگوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ جو دین محمد رسول اللہ پہ آنا تھا وہ آ چکا، وہ 1000 سال کے لیے تھا، اب وہ دور ختم ہوا، اب یہ الف ثانی، الف کہتے ہیں 1000 کو، ثانی کہتے ہیں دوسرے کو، یعنی اب دوسرا ایرا شروع ہو گیا، اب ہمیں نیا دین چاہیے۔ اتنی تعویلات ہوئیں، انشاءاللہ آگے ایک آیت آ رہی ہے اس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے، اور اسی کا توڑ بھی اسی رکوع کی ایک آیت میں آپ پڑھیں گے جو بڑی مختصر سی آیت ہے لیکن بہت ہی اہم ہے۔ آج کے دور میں یہ مسئلے بھی عام ہیں کہ سب کو ایک ہی کر دو، ہندو اس کو بھگوان کہتا ہے، مسلمان اس کو خدا کہتا ہے، عیسائی اس کو گاڈ کہتا ہے، لیکن جو بھی کرتے رہو لیکن تم ایک ہو۔ انشاءاللہ ان پوری آیتوں کے بیچ میں ایک ایسی آیت آئے گی جس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے اہم سبق ہیں۔ میں نے یہ ساری تمہید کیوں باندھی کہ بعض دفعہ جو ہی بنی اسرائیل کا لفظ آتا ہے تو ہم اپنے کان بند کر لیتے ہیں، کہتے ہیں اوکے یہ تو ہسٹری ہے، کبھی انجوائے کرتے ہیں، کبھی ہم ہنسیں گے ان کے منو سلوا کا مذاق اڑانے پہ، کبھی ہم ان کے کھانے پینے کی لسٹ کو دیکھ کر اپنی دل میں ایک ایسی رونت لائیں گے کہ دیکھو ہمیں تو ان سے بھی زیادہ ملا، لیکن جب کوئی قرآن پاک کو سنجیدگی سے نہیں پڑھتا تو اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں ہوں کہ جو غیر سنجیدہ ہو کے پڑھیں۔ تو اب آیت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور بالکل ہلکی سی وضاحت کر کے اس رکوع کو پورا کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس میں سے کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے کہ جو ہم اپنے عمل کے لیے پک کریں۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بیٹو یعقوب کے، یہاں بھی دیکھیے کہ کسی کو اس کے ماں باپ کی نسبت سے پکارنا اصل میں اس کو آر دلانا ہوتا ہے، اس کو شرم دلانا ہوتا ہے کہ دیکھو تم کس کی اولاد ہو۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ یا یہود، یا اہل کتاب بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی نیک نامی کو بٹا لگاتی ہے نا، تو جب وہ سننے کو تیار نہ ہو تو پھر اس کو تھپڑ مار کے کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے تم کس کی اولاد ہو، تمہارا دادا کون تھا، تمہارا نانا کون تھا، تمہارے باپ کی عزت کتنی ہے شہر میں، تم کیا کر رہے ہو۔ یہ انداز ہے کہ دیکھو یا بنی اسرائیل تم نبیوں کی اولاد ہو، اور یا بنی یعقوب نہیں ہے، اسرائیل عبدیت اللہ کے بندے کی اولاد ہو، وہ اللہ کے بندے تھے تو تم اللہ کے بندے کیوں نہیں بنتے۔ اس کرو یاد کرو نعمتی اللتی میری وہ نعمت جو انمت علیکم جو میں نے تم پر انعام کی، وہ نبوت کی صورت میں اور دنیا کی خوشحالیوں کی صورت میں، تمہارے پاس انبیاء کرام کو بھیجنا تھا یا تورات اور انجیل کا نازل کرنا تھا، میں نے تمہیں بہت ساری نعمتیں دیں لیکن तुमने उनके साथ क्या किया। वानी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, और बेशक मैंने तुमको जहानों पर फजीलत दी। ये कौन से जहान थे? उस दौर का जहान था। यहाँ एक हल्की सी बात जहन में आ जाती है, जब लोग इस आयत को पढ़ते हैं तो वो सोच में मुबतला हो जाते हैं कि क्या फिर बनी इसराइल को ज़्यादा इज्जत मिली थी या आज उम्मते मुस्लिमा की ज़्यादा अहमियत है। तो जहन में ये रख लीजिएगा बात, अरबी ज़ुबान का एक कायदा है कि कहीं कहीं ज़र्फ़ का तذکرہ होता है, यानी जिसमें कोई चीज़ होती है लेकिन उससे मुराद वो चीज़ होती है जो उसमें मौजूद है। मुश्किल लफ्ज़ है ज़र्फ़ और मज़रूफ़, उसका थोड़ा सा हल्का आसान करना चाहती हूँ। यानी बाज़ दफ़ा कोई चीज़ बोली जाती है लेकिन मुराद उसके अंदर की कोई चीज़ होती है। यहाँ बिल्कुल ऐसे है, तमाम जहानों पर फजीलत से मुराद जहान वालों पर फजीलत है। मतलब क्या है? दुनिया में जितनी कौमें हैं उन पर फजीलत दी, जो इंसान, जो गिरोह, जो तबकात थे। लेकिन जहन में रखिएगा कि ये उस दौर के जहान वालों पर थी, इससे आज के बिगड़े हुए लोगों की फजीलत नहीं मिलती, क्योंकि आज यही मनसब उम्मत मुस्लिमा को मिल चुका। दूसरे पारे के आगाज़ में हम पढ़ेंगे कि वजअलनाकुम उम्मतम वसता लितकूनु शुहदा अलन्नास, हमने तुमको उम्मत वसत बना दिया। और अल्लाह ताला ने उन दो रुखे लोगों से नियाबत का हक छीन कर उम्मत मुहम्मदिया को दे दिया। और उम्मत वसत ऐसी उम्मत है जो कौमों के दिल में दिल की धड़कन की तरह बसती हो। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बताते हैं कि देखो, तुम्हें मैंने इज्जत दी थी और अल्लाह ने बनी इसराइल को वर्ल्ड लीडर बनाया था, उनको बड़ा बनाया था। उस फजीलत का तذکرہ है, किसी गिरोह को अल्लाह के लिए चुन लिया जाना, उसके ऊपर अल्लाह का इनाम होता है। किसी इंसान को अल्लाह अपने काम का बना ले, ये उस इंसान पे अल्लाह का एहसान होता है। किसी ज़मीन के टुकड़े को अल्लाह ताला अपने दीन के लिए चुन ले, ये उस ज़मीन के टुकड़े की किस्मत होती है। जिस तरह इंसानों की किस्मत है ना, इस तरह जगहों की भी किस्मत होती है। आपकी कापियों की भी किस्मत है। एक वो कापी है कि जिसमें आप अल्लाह का कलाम लिख रहे हैं, एक वो इंक है जिससे आप अल्लाह के कलाम की बातों को अपने अमल के लिए नोट कर रहे हैं, और एक इंक वो है कि जो इसी कॉपी के कोने पे फूल बूटे बना रहा होगा। और हम में से कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा, बस बदकिस्मती की बात है। एक ज़मीन का वो टुकड़ा है कि जहाँ अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है, और एक वो टुकड़ा होता है कि जहाँ शैतान को खुश करने वाली चीज़ें रखी जाती हैं। तो हर बंदा इस चीज़ को चेक करे, अगर अल्लाह ने हमें चुन लिया है इस कलाम के पढ़ने और पढ़ाने के लिए, तो इस पे अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। ये जगह अगर अल्लाह ने चुनी है ना, तो ये कोई अचानक फ़ैसला नहीं है। इसके पीछे न जाने कितने इखलास होंगे और कितनी कोशिशें होंगी। इसलिए अगर किसी नेमत से महरूमी हो ना, तो रोने की ज़रूरत है कि अल्लाह मेरी नेमत किसी और ने क्यों ले ली और मेरा काम किसी और ने क्यों करा। तो अल्लाह ताला बनी इसराइल को बता रहे हैं कि देखो, किसको अल्लाह चुनता है? जिनको अल्लाह ताला कोई मिशन दे देता है। अब हुआ क्या कि बनी इसराइल को तो चुना था, काम करो, मेहनत करो। इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, अल्लाह ने जो आदम अलैहिस्सलाम को खिलाफत का मनसब दिया था उसको पूरा करो, लेकिन इन्होंने अपने आप को खुद फरेबियों में मुब्तला कर लिया। चार किस्म की बुराइयां इनके अंदर आखिरत के अकीदे के नाते से शामिल हो गई। और जहन में रखिएगा कि अकीदा आखिरत, यानी मरने के बाद दोबारा जीने का तसव्वुर, बंदे को ज़िंदगी में काम करने पे मजबूर करता है। जहाँ जिस इंसान के अमल में कमी देखेंगे ना, तो समझ लीजिए कि अकीदा आखिरत बिगड़ चुका है। क्योंकि वो दिन ऐसा दिन आने वाला है कि जिसकी पकड़ का एहसास इंसान को सीधा कर देता है। अल्लाह ने इनको भी वही बात बताई थी कि जो आज उम्मत मुस्लिमा को बताई है, कि देखो, इस दुनिया में अल्लाह के बंदे बन के रहो तो कल तुम्हारी निजात होगी, और अगर अपना काम नहीं करोगे तो पकड़ बड़ी सख्त है। अब जब पकड़ होती है ना, किसी इंसान के जहन में भी ज़रा सोचिए, कोई अजाब आता है, किसी की पकड़, कोई हुक्मरान पकड़ ले, कोई बड़ी ताकत पकड़ ले, कोई इदारा पकड़ ले, किसी की भी पकड़ो, तो अमूमन उस अजाब से बचने की चार सूरतें होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? एक क्या है कि ज़बरदस्ती सज़ा देने वाले के हाथ से छुड़ा लिया जाए। इसको नुसरत कहते हैं, मदद कर दी जाए। दूसरा तरीका क्या होता है कि मुफ्त में छोड़ दिया जाए किसी के कहने पर, इसको सिफारिश कहते हैं, शिफात। तीसरी एक सूरत होती है कि जो इसके जिम्मे हो वो अदा कर दिया जाए, ये जज़ा है। और चौथी एक सूरत होती है कि जो जिम्मे है वो तो अदा न किया जाए मगर इसका कोई बदल दे दिया जाए, यानी चोरी करे मालिक और उसके बदले में गुलाम का हाथ काट दिया जाए, अदले का बदला, इसको अदल कहते हैं। बनी इसराइल में ये चारों की चारों खराबियां पैदा हो गई थी कि इन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया, पहली बात कि हम शू के नबियों की औलाद हैं तो इस नस्बत से ही अल्लाह हमारी मदद कर देगा। दूसरा, इनमें खराबी आ गई कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं तो वो हमारी सिफारिश करके हमको बचा लेंगे। एक और खुशफहमी आ गई कि ये दुनिया बनी ही यहूद के लिए थी और यहूद के गुनाहों के कफारे में अल्लाह ताला आम लोगों को आग में डाल देगा। और बाकी रह गई बात कि अगर कहीं कोई पकड़ शकड़ हुई भी तो बस दे दिला के छुट जाएंगे। इसलिए अगली आयत में अल्लाह ताला ने इन चारों सूरतों की नफ़ी कर दी कि वत्तकू यौमन ला तज्जी नफ्सुन नफ्सिन शैया, और डरो उस दिन से जिस दिन काम ना आ सकेगी कोई जान किसी दूसरी जान के, कोई किसी के काम नहीं आएगा। तुम नबियों पे कियास करके बैठे हुए हो, तुम उम्मीदें लगा के बैठे हुए अपने बुजुर्गों पे, तुम समझते हो कि हम इब्राहिम की नस्ल से हो गए, हम अल्लाह के चहीते हो गए, अब इसलिए हमारी पकड़ नहीं होगी। तो कहा वत्तकू, डर जाओ, अल्लाह से डरो, खौफ खशियत इख्तियार करो। कितना बड़ा लफ्ज़ है किसी को ये कहना ना कि अल्लाह से डरो, ये ऐसे ही है कि जैसे आप उसको आसमान से उठा के ज़मीन पे फेंक दें। एक मौके पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो को किसी ने कहा कि या उमर इत्तक़िल्लाह, ए उमर अल्लाह से डर जा, इतनी खशियत तारी हुई कि ज़मीन पे अपना गाल टका दिया, रोने लगे, कहने लगे तुमने मुझे इतने बड़े की यार दिलाई। अल्लाह का खौफ बंदे को सोने नहीं देता। अल्लाह ताला कहते हैं कि डर जाओ उस दिन से, आखिरत की पकड़ से डर जाओ। जब तक ईमान बिल आखिरा ठीक रहता है ना, इंसान सीधा रहता है, इसमें कमी आती है ना तो खुद बहुत ईमान बिल्ला और ईमान बिर रिसालत में भी कमी आने लगती है और अमल सवाले की बजाय सिर्फ खुशफहमियाँ होती हैं। अल्लाह ताला ने कहा डर जाओ। और दूसरी बात कि ला तज्जी नफ्सुन नफ्सिन शैया, कोई नफ्स किसी दूसरे के काम नहीं आएगा। दुनिया में अमूमन लोग किसी के काम क्यों आते हैं, सोचिए ज़रा, क्यास कीजिए अपने हालात पे। अमूमन किसी पे रहम आ जाता है, किसी से मोहब्बत होती है, किसी के प्रेशर में आके किसी की मदद कर लेते हैं। माँ है तो अपनी ममता की वजह से मोहब्बत कर देती है, कभी सवाब की उम्मीद होती है कि किसी का कोई काम कर दो ताकि कुछ फ़ायदा हो जाए। क़यामत के दिन ये सारे मोटिव्स ख़त्म हो जाएंगे, इनमें से कोई वजह बाकी नहीं रहेगी जो किसी के काम आए। और सबसे बढ़ के ये कि इख्तियार ही नहीं होगा, अल्लाह ने इजाज़त ही नहीं दी। और इसलिए भी कि हर बंदा खुद ही इतनी मुश्किल में होगा कि दूसरे की मदद क्या करे। सूरत अबस में आता है, 30वें पारे की दूसरी सूरत है कि यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मीही व अबी, उस दिन आदमी भागेगा अपनी माँ से और अपने भाई से, बेटों से, माल से, औलाद से। क्यों? आखिर में वजह बता दी, लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौम इज़िन शअनुन युग्नी, इसलिए कि उस दिन हर बंदे की अपनी हालत ऐसी होगी जो दूसरे से उनको उसको बेनियाज कर देगी। आप दूसरे की मदद की उम्मीद रखो, दिलाते हैं उसको, वादा भी कर लेते हैं, लेकिन अगर उस वक्त आप खुद ही बीमार हो, उस वक्त आपके ऊपर ही कोई मुसीबत पड़ जाए, क्या होता है, काम नहीं कर सकते ना। बिल्कुल इसी तरह क़यामत का दिन इतना बेलाग दिन होगा कि जिनकी उम्मीदों पे लोगों ने कुछ किया होगा वो सारे ही मुश्किलों में होंगे। आगे हम इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे बहुत जगह। तो कहा कि कोई किसी के काम नहीं आएगा, हत्ता कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझसे इतनी मोहब्बत फरमाते हैं तो क्या कल क़यामत के दिन आप मेरे काम आएंगे, मुझे याद रखेंगे? तो कहा कि आयशा, क़यामत की घड़ियों में तीन मुकाम ऐसे आने वाले हैं, ला यस्कुरु अहदुन अहदा, कोई एक किसी दूसरे के काम नहीं आएगा, हत्ता कि मैं भी तुझे भूल जाऊंगा। इंदस सिरात, पुल सरात के ऊपर, इंदल मीज़ान, जब नेकियां और बदियां तुल रही होंगी और जब अमालनामे बट रहे होंगे, मैं भी इतना खौफजदा होऊंगा कि मैं भी भूल जाऊंगा तुझे। कहने वाले और सुनने वाले अपना मुहासबा कर सकते हैं, किस उम्मीद पे जीते हैं? आज इतनी बेरग़बती क्यों है अल्लाह के दीन से? आज इतना हल्का इसको क्यों जानते हैं? हंस के क्यों टाल देते हैं अल्लाह के दीन की दावत को? छोटी छोटी वजूहात पे अल्लाह का दीन हमारे हाथों से क्यों फिसलता है? इसलिए कि उस दिन की हकीकत अभी बताई नहीं। पता होता है ना कि अगर ये काम ना किया तो टिकट मिल जाएगा, ये काम ना किया तो इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, तो हर हाल में वहाँ पहुँचते हैं। टिकट नॉन रिफंडेबल हो तो मारे बांधे कुछ भी हो जाते हैं कि कुछ नहीं मिलना। क्या होगा, 200-400 डॉलर की बात होगी ना, जहाँ पूरी ज़िंदगी ज़ाया हो जाए और कहा जाए कि अब कोई वापसी की उम्मीद भी नहीं। इसलिए इस दुनिया में एक इंसान सोच ले कि मैं क्यों उस दिन की शिद्दत से गाफिल हूँ। ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, और आप देखिए सब नकिरा है, नफ्स अन नफ्स नहीं का, इंसान, काफिर, मोमिन, नेक, बद, नबी, वली, पैगंबर, हर एक इसमें आता है, यानी लिटरली कोई किसी के काम नहीं आएगा। वला युकबलु मिनहा शफा, और किसी की सिफारिश कबूल नहीं होगी, किसी की सिफारिश कबूल नहीं होगी। ये थी दूसरी उनकी खुशफहमियाँ कि जी हम जो चाहें करें, नबी आएंगे और सिफारिश कर लेंगे। कहा किसी की सिफारिश कबूल नहीं होगी, क्यों? इसलिए कि सिफारिश सिफारिश है, हुक्म तो नहीं। देखिए सिफारिश का नज़रिया हमारे यहाँ बहुत प्ल्यूटेड है, बिल्कुल ये आयत आगे भी आएगी, वहाँ भी बात करेंगे, लेकिन बनी इसराइल में जो ख़राबी थी ना सिफारिश के नाते से, आज उम्मत मुस्लिमा में कई गुना बढ़ के आ गई। दो इंतहाएं पाई जाती हैं सिफारिश के मामले में। कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल कोई सिफारिश नहीं है, आराम से बैठो, और कुछ कहते हैं जो मर्जी करो बस सिफारिश काम आएगी। हालांकि हकीकत क्या है कि सिफारिश बरहक है, सही मुस्लिम की रिवायत है ये। हर नबी ने अपनी उम्मत के लिए दुआ की, लेकिन अल्लाह के नबी को जो दुआ का हक दिया गया था, आपने उसको सिफारिश के लिए रख लिया आखरत में। बहुत सारी ऐसी रिवायात हैं, आपने कहा कि मैं औलाद आदम का सरदार हूँ लेकिन इस पे फ़ख्र नहीं करता, सबसे पहले मुझ पर ज़मीन फटेगी लेकिन मैं फ़ख्र नहीं करता, और सबसे पहले मैं सिफारिश करूँगा और मेरी सिफारिश कबूल होगी लेकिन मैं फ़ख्र नहीं करता, और मेरे हाथ में हम्द का झंडा होगा। लेकिन ये सिफारिश कौन सी होगी? हिसाब शुरू होने की। आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे आप, क़यामत के दिन तो सिर्फ इसके लिए लोग अल्लाह के नबी के पास सिफारिश कराएंगे कि कुछ भी जो हमारा होना है होने दें, बस एक दफ़ा हिसाब शुरू हो जाए। गर्मी से मारे जा रहे हैं, घुटन है, लाइनों में लगे हुए हैं, ये खिड़की नहीं खुल रही, बस अल्लाह से कहें हिसाब शुरू कर दें। इसको मकामे महमूद कहते हैं, और ये शिफाते उसमें, ये अगली शिफात तो बात की बात है कि जन्नत मिले के जहन्नम, ये ऐसे होता है, कहते हैं भाई जो अनाउंस होना है फिर हो जाए, एक दफ़ा हमें आगे पीछे किया जाए। हशर की इतनी वहशत होगी, इतनी उस दिन की गर्मी होगी कि उस दिन अल्लाह हिसाब ही नहीं शुरू करेंगे, खामोशी है, सब खड़े हैं, ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी जाके सिफारिश करेंगे। लेकिन जहाँ रह गई बात अल्लाह के नबी के कहने पे लोगों का जन्नत में जाना या जहन्नुम में जाना, ये तो अगला मरहला है, इसको वहाँ जाके देखेंगे इंशाल्लाह, जहाँ डायरेक्ट ये बात आएगी। लेकिन यह ओवरऑल देख लीजिए कि सिफारिश तो होगी क़यामत के दिन, मगर शरायत के साथ। क्या शरायत है सिफारिश की? पहली शर्त यह कि जिसकी सिफारिश की अल्लाह इजाज़त देगा ना, उसकी सिफारिश होगी, जिसके लिए अल्लाह ताला पसंद करेंगे उसकी सिफारिश होगी। क्योंकि देखिए सिफारिश सिफारिश है, हुक्म तो नहीं है ना, फैसला तो नहीं है। मानने वाला माने ना माने, उसकी मर्जी। फिर एक और शर्त है कि कुछ ना कुछ काबिलियत होनी चाहिए। आप किसी मैट्रिक पास को किसी कॉलेज का प्रिंसिपल लगवा सकते हैं? नहीं लगवा सकते ना। हाँ, दो ने मास्टर किया हुआ था, एक का एक्सपीरियंस था, दूसरे का कम था। हो सकता है किसी की सिफारिश से कम एक्सपीरियंस वाला आगे आ जाए, पॉसिबल है। कुछ तो काबिलियत हो। ये तो नहीं हो सकता कि हम तो मर्जी के काम करते जाएं और अल्लाह के नबी आते जाएं और कि अल्लाह ताला ये मेरे उम्मत के शराबी लोग हैं, इनको जन्नत दे दो। ये चोरियां बड़ी करते थे लेकिन इनको जन्नत दे दो। ये जिना बड़ा करते थे दे दो। ये सूद खोर थे इनका काम कर दो। ये नमाज कभी पढ़ते थे कभी नहीं। दुनिया में भी कोई करता है किसी ऐसे शख्स की सिफारिश जिसके बारे में आपको ज़रा शक पड़ जाए ना कि इसने कोई क्राइम किया हुआ है? बस आप देखिए कि बस लोग ये कहते हैं ना कि ऐसे होगा, बस सिफारिश करेंगे और काम हो जाएगा। मसलन आप देखिए कि एक शख्स है, कोई जुर्म करता है, चोरी करता है या कोई कत्ल करता है, उस पर मुकदमा चलता है, अदालत में फैसला होने वाला है। अब वो शख्स किसी MNA MPA या किसी बड़े शख्स जिससे उसके पुराने मरासम थे, उसको कहता है कि देखो मेरे पे मुकदमा बना हुआ है, ज़रा मेरी सिफारिश कर दो। हो सकता है वो उसके हाल पे अच्छा कयास करे कि तो अच्छा शख्स है, हो सकता है इस पे कोई बात हुई। वो फ़ोन कर देता है जज साहब को कि जज साहब ये फलां जो आया है ये मैं ऐसे है, दोस्त है मेरा और ये अच्छा बंदा है, इसको आप छोड़ दें ऐसे ही। तो जज साहब जिनके आगे पूरी हिस्ट्री खुली है और सारे गवाह भी मौजूद हैं और हालात मौजूद हैं, वो आगे से सिर्फ इतना ही कह देना कि MNA साहब आपको पता है इस शख्स का जुर्म क्या है, ये कातिल है और ये मेरे पास वीडियो मौजूद है और ये सबूत मौजूद है। यकीन करें वह MNA को अपनी कुर्सी की फिक्र पड़ जाएगी। वो कहेगा अच्छा ये बात तो इसने मुझे बताई नहीं कि ये वाकई चोरी कर चुका है या कत्ल कर चुका है, अब जो मर्जी करें जी मेरा इससे कोई दखल नहीं, क्योंकि उसको डर है कि मुझे भी पकड़ लिया जाएगा। लोग तो ऐसे शख्स के पास नहीं होते कि कहीं हमें भी गवाहों में ना बुला लिया जाए। तो क्या क्यामत के दिन कोई ऐसी सिफारिश कर देगा? फिर अगली बात यह है कि सिफारिश जिसके लिए होगी उसके लिए कुछ ऐसे अमल ना बीच में रुकावट बन जाएं कि जो सिफारिश से ही खिलाफ हो, यानी बिदत जिसका बोलते हैं कि दीन में कोई इजाफा है। क्यामत के दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हौज़े कौसर पे मैं तुम्हें मिलूंगा। कहा लोगों का पहचानेंगे कैसे? कहा कि मैं उनके वुजू के आज़ा जो है उनके चमकने से पहचानूंगा। कहा इसी तरह कुछ लोग आएंगे और मैं उनको अपने हाथ से हौज़े कौसर पिला रहा हूँगा। कुछ लोग आएंगे चमकते हुए, सारे वजू नमाजें भी हैं सब कुछ है, लेकिन फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह के नबी रुक जाइए, आपको नहीं पता कि इन्होंने आपके जाने के बाद किया क्या। गैयर दीन, आपके दीन को बदल दिया। अल्लाह के नबी कहते हैं जब मैं ये बात सुनूंगा कि इन्होंने मेरे दीन में इजाफे कर दिए तो मैं कहूँगा फसुख कन लिमन गैयर आबादी। कारो पीछे करो उनको जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया। आप सोचिए छोटा काम नहीं है। आपकी बने हुए खाने के अंदर कोई नमक ज्यादा डाल के 2 चम्मच ज्यादा कर दे, आप कहते हैं इसने मेरे खाने की शक्ल बिगाड़ दी। आप एक हंडिया पकी हुई दूसरे का चमचा ना बर्दाश्त करें, कहाँ अल्लाह के नबी के दीन को जिसका जो दिल चाहे करता जाए। और इतनी नरमियाँ सिर्फ इसलिए कि लोग हमसे खुश रहें? कैसा नहीं होगा। फिर इसी तरह आप देखिए कि कुछ लोगों को क्यामत के दिन सिफारिश की वजह से जहन्नुम से निकाला जाएगा। तो कोई तैयार है पहले जाने के लिए? कुछ सिफारिश से जहन्नुम जाने से बचेंगे और कुछ जहन्नुम से निकाले जाएंगे। इसी तरह मुशरिक की सिफारिश कबूल नहीं होगी। फिर एक जुमला बस इस पे आखिरी समझ लें कि दुनिया में सिफारिश फैसलों से पहले होती है। अभी फैसला नहीं सुनाया हुआ और सिफारिश हो गई, फैसला बदल जाएगा। एक दफा कोई सिफारिश तब करे जब फैसला डिक्लेयर हो गया, तो आप क्या कहेंगे कि जी सॉरी अब तो डिक्लेयर हो गया, कलम टूट गया है। कयामत के दिन फैसले पहले होंगे, सिफारिश बाद में होगी। अल्लाह ताला पहले डिसाइड करेंगे कि किसको छोड़ना है और किसको नहीं छोड़ना। जब डिसाइड कर लेंगे ना, तो फिर अल्लाह अपने नबियों को भी इज्जत देने के लिए, शुहदा को इज्जत देने के लिए, कुछ हालात में हाफिज़े कुरान को इज्जत देने के लिए, बाज़ मुकामात पे कुरान की सूरतें सिफारिश करेंगी, उनको कहेंगे कि आप सिफारिश कर लो। ये ऐसी है जैसे बच्चे पे बाप को गुस्सा आए ना, जब बहुत गुस्सा, शदीद गुस्सा, तो जब उसको मारते हैं और अगर बीवी बीच में आ जाए ना, तो वो बीवी को भी हाथ लग जाता है कि पीछे हो जाओ, तुम्हें नहीं पता ये कितना खराब है। लेकिन बाज हालात ऐसे होते हैं कि बाप ने मारना नहीं होता बच्चे को, सिर्फ डराना होता है। तो बीवी को पहले से इशारा कर देता है कि देखो मैं इसको मारने लगूंगा, तुम आके बचा लेना, तो मैं तुम्हारे कहने पे छोड़ दूंगा। बच्चा डर जाएगा। अल्लाह ताला ऐसे नहीं छोड़ देगा हर एक को, लेकिन इन्होंने जो सोचा आज हमने उससे बढ़ के सोचा। उन्होंने तो अंबिया कराम की सिफारिशें सोची थी ना, हमने तो आम इंसानों की, किसी को वली बना के, किसी को हमने कोई बुजुर्ग बना के उनकी सिफारिशें कर दी, जिनको बेचारों को खुद अपना नहीं पता होगा। नबी सल्लम के एक हदीस में आता है कि क्यामत के दिन क्या होगा, नफसी नफसी, कोई नहीं बोलेगा और सिर्फ अंबिया कराम बोलेंगे, और उनकी ज़ुबान पे भी एक ही लफ्ज़ होगा, अल्लाहुम्मा सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लिम, अल्लाह मुझे सलामत रख, अल्लाह मुझे सलामत रख, नफसी नफसी, मेरी जान मेरी जान। तो बहरहाल ये कोई खेल नहीं है। और जो जितना बेअमल होता है ना, उतना सिफारिश की ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठता है। जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो कभी नहीं कहते कि हमें रियायती नंबर दिए जाएँ, वो कहते हैं हम अपनी मेहनत करेंगे। तो जो दूसरों की आस पे काम ना करें, फिर उनका यही हाल होगा। तो अल्लाह ताला ने इनको कहा कि कोई नबी तुम्हारी सिफारिश नहीं करेगा। यहाँ तक तिलावत सुनेंगे, और जो बातें हुई हैं उसको जहन में रखते हुए फिर सुने आप इसको।
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون